एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं वायोला डेविस की। 2022 में आई उनकी बेहद पावरफुल आत्मकथा फाइंडिंग मी पर।
जी
हाँ, और देखिए, ये सिर्फ किसी हॉलीवुड स्टार की एक और कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा कच्ची, ईमानदार।
बिल्कुल सही कहा। वायोला डेविस मतलब एक्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, एकेडमी अवार्ड विनर है।
हाँ,
और उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने एक्टिंग का ट्रिपल क्राउन जीता है, ऑस्कर, एमी, टोनी, सब।
कमाल है
जी, लेकिन ये किताब जैसा आपने कहा उस चमक के पीछे ले जाती है, उस इंसान से मिलवाती है जो रोड आइलैंड की, आप सोचिए, भयानक गरीबी से निकली।
हाँ, और सिर्फ गरीबी नहीं, गहरे पारिवारिक सदमे, नस्लवाद, बहुत कुछ झेला।
बिल्कुल, और उन सब से जूझते हुए आज वो मनोरंजन जगत की, बल्कि कह सकते हैं सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की एक बहुत मजबूत आवाज है।
और यही बात शायद इसे आज और भी जरूरी बना देती है ना, मतलब ये पहचान, सदमा, फिर उससे उभरना और पूरी इंसानियत के साथ खड़े होना, आज के दौर में ये कहानी क्यों इतनी मायने रखती है?
देखिए, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ वायोला डेविस की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो अपनी सच्चाई को, जैसी भी वो है, अपनाने से आती है। ये दिखाती है कि कैसे व्यवस्थागत दिक्कतें, जैसे नस्लवाद है, गरीबी है, सदमे हैं, उनसे निकला जा सकता है, और कैसे एक इंसान का अपना संघर्ष, अपना उपचार, वो एक बड़े सामाजिक बदलाव की एक चिंगारी बन सकता है।
मतलब ये सफलता को सिर्फ अवार्ड्स से नहीं जोड़ती?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जोड़ती है कि क्या आप दुनिया के सामने बिना डरे पूरी ईमानदारी से खुद को रख सकते हैं। ये है असली प्रामाणिकता, और उसमें एक गजब की ताकत है, एक तरह की क्रांतिकारी ताकत।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कहानी शुरू होती है दक्षिण कैरोलिना से, एक पुरानी जगह से जिसे वो खुद शापित धरती कहती हैं।
हाँ, सेंट मैथ्यूज में एक पूर्व बागान जहां का इतिहास गुलामी और दमन से जुड़ा था। फिर परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में नॉर्थ गया, रोड आइलैंड के सेंट्रल फॉल्स शहर।
लेकिन मुश्किलें वहां भी कम नहीं थीं।
गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा?
बिल्कुल नहीं छोड़ा। सेंट्रल फॉल्स में उनका बचपन, मतलब बहुत ही ज्यादा गरीबी और मुश्किलों में बीता। टूटे फूटे घर, चूहों का होना आम बात थी।
उफ।
कई कई दिन भूखे रहना पड़ता था, बच्चों को कूड़ेदान तक में खाना ढूंढना पड़ता था। ये हालात थे,
सोचकर भी मुश्किल लगता है।
हाँ, पिता थे डैन डेविस, प्यार करते थे, पर शराब की लत थी और उसके साथ आती थी हिंसा। घर का माहौल अक्सर डरा हुआ, अनिश्चित रहता था। दूसरी तरफ उनकी मां थी मे एलिस डेविस, वो एक योद्धा थी, एक्टिविस्ट भी थी और परिवार को किसी तरह जोड़े रखती थी, बहुत मजबूत।
तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच उनका बचपन गुजरा।
घर के अंदर ये सब चल रहा था और बाहर स्कूल में नस्लवाद।
हाँ, वो भी भयानक। सिर्फ उनके रंग की वजह से बच्चे पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, बदसूरत कहते थे।
ये तो बहुत ही,
इसने उन्हें एकदम अदृश्य महसूस कराया, जैसे उनका कोई वजूद ही नहीं है, और ये घाव बहुत गहरा था।
लेकिन शायद इसी एहसास ने कि वो अदृश्य हैं, उनके अंदर वो इच्छा जगाई कि नहीं, मुझे दिखना है, मुझे अपनी पहचान बनानी है।
बिल्कुल बिल्कुल, और शायद यहीं से एक्टिंग की तरफ उनका रुझान शुरू हुआ। एक्टिंग उनके लिए एक तरह का बचाव का रास्ता बनी, खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया।
हाँ,
उन किरदारों में जीने का मौका जहां शायद उन्हें वो सम्मान मिलता था जो असल जिंदगी में नहीं था,
एक पनाहगाह जैसी।
हाँ, कह सकते हैं। और इसमें एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने हाई स्कूल में अपवर्ड बाउंड प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और फिर उन्होंने महान एक्ट्रेस सिसली टाइसन को एक प्ले में देखा।
अच्छा,
वो पहली बार था जब उन्होंने किसी अश्वेत महिला को इतने सम्मान, इतनी गरिमा, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ स्टेज पे देखा था। वो पल उनके लिए जैसे एक रोशनी की तरह था कि हाँ, मेरे जैसी दिखने वाली महिला भी कला के सेंटर में हो सकती है।
इस एहसास ने उन्हें कहाँ पहुंचाया? रोड आइलैंड कॉलेज?
जी, पहले रोड आइलैंड कॉलेज जहाँ थिएटर पढ़ा, और फिर वो बड़ा ब्रेक, न्यूयॉर्क के मशहूर जूलियार्ड स्कूल में एडमिशन।
वाह, ये तो सपना सच होने जैसा रहा होगा।
हाँ, एक तरफ तो सपना सच हुआ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये दो धारी तलवार भी थी।
कैसे?
देखिए, जूलियार्ड ने उन्हें वर्ल्ड क्लास टेक्निकल ट्रेनिंग दी, एक्टिंग की बारीकियां सिखाई, इसमें कोई शक नहीं। पर साथ ही वहां एक जबरदस्त दबाव था कि वो अपनी अश्वेत पहचान को मिटा दे, अपनी बोली, अपना लहजा, अपने सांस्कृतिक अनुभव, सब कुछ।
मतलब एक खास तरह के सांचे में ढलने का दबाव।
बिल्कुल, एक यूरोसेंट्रिक सांचा कि अगर सफल होना है तो अपनी जड़ों को भूलना होगा, उन्हें काटना होगा। ये उनके लिए बहुत दुखदाई था।
मैं समझ सकती हूँ।
लेकिन शायद इसी संघर्ष ने उन्हें अपनी पहचान को लेकर और ज्यादा मजबूत बनाया। उन्हें समझ आया कि अपनी आवाज को बचाना कितना जरूरी है।
जूलियट के बाद क्या हुआ? क्या राह आसान हुई?
नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूयॉर्क में स्ट्रगल जारी रहा। काम मिलना मुश्किल, लगातार रिजेक्शन, पैसों की किल्लत और इंडस्ट्री का वही पुराना रवैया कि वो लीड रोल के लिए सही नहीं है। कभी कहा गया पर्याप्त सुंदर नहीं, कभी पर्याप्त गोरी नहीं। ये कलरिज्म, मतलब रंग के आधार पर भेदभाव, ये एक कड़वी सच्चाई है, खासकर गहरी रंगत वाली महिलाओं के लिए।
ये तो बहुत निराशाजनक है।
है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थिएटर में धीरे धीरे काम मिलने लगा और ऑगस्ट विल्सन के नाटकों में काम करना उनके लिए बहुत अहम साबित हुआ।
ऑगस्ट विल्सन, हाँ।
उनके नाटक अश्वेत अमेरिकी जिंदगी को बड़ी ईमानदारी से दिखाते हैं। विल्सन के प्ले किंग हेडली सेकंड के लिए उन्हें अपना पहला टोनी अवार्ड मिला। वो उनके लिए जैसे घर वापसी थी, जहां उनके अनुभव को समझा और सराहा जाता था।
थिएटर में तो पहचान बनी, लेकिन हॉलीवुड?
हॉलीवुड अभी भी दूर था। छोटी मोटी भूमिकाएं मिल रही थी, फिर आई 2008 में फिल्म डाउट।
हाँ, डाउट, उसमें तो उनका रोल बहुत छोटा था ना।
बहुत छोटा, शायद मुश्किल से 10 मिनट का स्क्रीन टाइम, लेकिन उन 10 मिनटों ने, जैसा कहते हैं ना, सब कुछ बदल दिया।
ऐसा क्या था उसमें?
मेरिल स्ट्रीप, फिलिप सीमो हॉफमैन जैसे बड़े एक्टर्स के सामने उन्होंने मिसेस मिलर का जो किरदार निभाया, जो दर्द, जो गुस्सा, जो बेबसी उन्होंने दिखाई, वो कमाल थी। उस छोटी सी भूमिका के लिए उन्हें ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला। सोचिए, सालों की अनदेखी के बाद ये एक जबरदस्त पहचान थी। दुनिया ने आखिरकार उनकी प्रतिभा को देखा।
और इसके बाद आई द हेल्प 2011 में।
जी, द हेल्प, इससे उन्हें और ज्यादा पहचान मिली, दूसरा ऑस्कर नॉमिनेशन भी। लेकिन यहाँ वायोला डेविस की ईमानदारी देखिए।
क्या मतलब?
बाद में उन्होंने इस फिल्म में काम करने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि कहानी अश्वेत किरदारों के नजरिए से ठीक से नहीं कही गई और नस्ली मुद्दों को थोड़ा सरल बना दिया गया था।
अच्छा, अपनी ही सफल फिल्म पर ऐसा कहना, ये हिम्मत की बात है।
बिल्कुल, ये उनकी सच्चाई दिखाता है। और फिर आया 2014 में टीवी शो हाउ टू गेट अवे विद मर्डर, एनालिस कीटिंग का रोल।
हाँ, वो तो बहुत ही पॉपुलर शो था।
बहुत, और एनालिस का किरदार उनके करियर के लिए एक मील का पत्थर था। एक पावरफुल, इंटेलिजेंट, कॉम्प्लेक्स, नैतिक रूप से ग्रे शेड वाली, और हाँ, एक गहरी रंगत की अश्वेत महिला जो कहानी के केंद्र में थी, ऐसा टीवी पर कम ही देखने को मिलता था।
और इसी रोल के लिए उन्हें एमी अवार्ड मिला है ना, वो पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्ट्रेस का एमी जीता।
जी हाँ, और उनका एक्सेप्टेंस भाषण भी बहुत दमदार था। और शो का वो सीन याद है जहाँ एनालिस अपना विग, अपना मेकअप हटाती है?
हाँ, बिल्कुल याद है।
आइकॉनिक सीन था वो।
आइकॉनिक, वो सिर्फ एक टीवी सीन नहीं था, वो एक कल्चरल स्टेटमेंट था। सुंदरता के पैमानों को चुनौती, कच्ची ईमानदारी।
सही कहा। और फिर 2017 में ऑगस्ट विल्सन के ही प्ले पर बनी फिल्म फेंसेस के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर मिला।
तो ट्रिपल क्राउन पूरा हुआ।
जी, ट्रिपल क्राउन पूरा हुआ। लेकिन अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, उन्होंने अपने पति जूलियस टेनॉन के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, जूवी प्रोडक्शंस।
अच्छा, उनका अपना प्रोडक्शन हाउस।
हाँ, और उनका मकसद है उन कहानियों को लाना जिन्हें मेनस्ट्रीम अक्सर नजरअंदाज करता है, खासकर अश्वेत महिलाओं की, दूसरे मार्जिनलाइज्ड समुदायों की कहानियां, जैसे हाल में द वुमन किलिंग आई थी।
हाँ, देखी थी।
और फिर ये किताब लिखना, फाइंडिंग मी, ये जैसे उनकी यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव है। अपनी कहानी पर, अपने नैरेटिव पर पूरा कंट्रोल लेना, अपना हक जताना।
ये सफर वाकई कमाल का है। और आपने शुरू में जिक्र किया था उनके मूल दर्शन का, रेडिकल ओनरशिप, इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये क्या है असल में?
हाँ, रेडिकल ओनरशिप, ये सिर्फ अपनी कहानी बताना भर नहीं है, ये है अपनी कहानी के हर हिस्से को, अच्छा, बुरा, दर्दनाक, शर्मनाक, सबको पूरी तरह से अपनाना। ये मानना कि आपके जख्म, आपकी गलतियां, आपकी कमजोरियां, ये सब भी आप ही हैं, इन्हें छिपाने या नकारने से आप अधूरे रह जाएंगे।
ये तो बहुत गहरी बात है।
हाँ, वायोला डेविस कहती हैं कि वो अपने अतीत को भूलना नहीं चाहती, वो उसे समझना चाहती हैं, क्योंकि वही उन्हें आज वो इंसान बनाता है जो वो हैं। ये आसान रास्ता नहीं है, जाहिर है।
बिल्कुल।
बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए, खासकर जब बुनिया आपको कहती है कि अपने कुछ हिस्सों को छुपाओ। पर उनका मानना है कि इसी ईमानदारी में असली ताकत है, असली आजादी है। थेरेपी ने भी इसमें उनकी बहुत मदद की।
ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हम अक्सर अपने अतीत की मुश्किल चीजों से भागते हैं, शायद उन्हें अपनाने में ही रास्ता छुपा हो। अच्छा, इस पूरे सफर में उनकी प्रेरणाएं कैसे बदली?
बिल्कुल बदली। शुरू में बचपन में प्रेरणा क्या थी? बस जिंदा रहना।
हाँ,
अगले दिन का खाना मिल जाए, हिंसा से बच जाए। फिर जब एक्टिंग में आई तो प्रेरणा बनी पहचान बनाना, खुद को साबित करना।
देखे जाने की इच्छा।
हाँ, देखे जाने की इच्छा। फिर जब थोड़ी सफलता मिली तो अंदर के जख्मों को भरने की जरूरत महसूस हुई, तो उपचार, हीलिंग, वो प्रेरणा बनी। और अब जब वो इस मुकाम पर है तो प्रेरणा है एक लेगेसी बनाना, दूसरों के लिए दरवाजे खोलना, खासकर उन लोगों के लिए जो उन्हीं की तरह हाशिए से आते हैं। ये जिम्मेदारी का एहसास अब उनके काम में, उनकी बातों में साफ दिखता है।
और वो मुश्किलों से भागती नहीं, सामना करते हैं।
बिल्कुल। अपनी कला को वो दर्द को प्रोसेस करने का, उसे बदलने का एक टूल मानती हैं।
उनका वो कोट के, अगर दुनिया आपके लिए जगह नहीं बनाती तो आपको खुद बनानी होगी,
ये उनके जीवन का निचोड़ लगता है।
एकदम। इस असाधारण यात्रा में अगर हम तीन सबसे अहम मोड़ या टर्निंग पॉइंट्स की बात करें तो वो कौन से होंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी?
तीन मोड़। पहला तो मेरे ख्याल से एक्टिंग की खोज ही थी, वो अपवर्ड बाउंड प्रोग्राम, सिसली टाइसन को देखना।
हाँ।
वो सिर्फ करियर चुनना नहीं था, वो एक लाइफलाइन थी। गरीबी, नस्लवाद, घर की परेशानियों के बीच एक्टिंग ने उन्हें एक पहचान दी, एक मकसद दिया, एक सेफ स्पेस दिया खुद को एक्सप्रेस करने का।
बिल्कुल, उसके बिना शायद कहानी कुछ और होती।
शायद। दूसरा मोड़ मैं कहूंगी जूलियट का अनुभव।
अच्छा, हालांकि वो मुश्किल था।
हाँ, मुश्किल था, लेकिन इसीलिए शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो एक कसौटी थी, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिली, पर साथ ही उनकी पहचान पर सवाल उठे। उन्हें अपनी अश्वेतता के लिए लड़ना पड़ा। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि इंडस्ट्री क्या चाहती है और उन्हें अपनी आवाज, अपनी जड़ों को बचाने के लिए कितना मजबूत होना पड़ेगा। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक सचेत कलाकार बनी वहां।
सही बात है, उसने उन्हें तैयार किया आगे की चुनौतियों के लिए।
बिल्कुल। और तीसरा टर्निंग पॉइंट,
मेरे ख्याल से वो डाउट का ऑस्कर नॉमिनेशन।
हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। सालों की छोटी भूमिकाओं और अनदेखी के बाद वो नॉमिनेशन एक धमाका था। उस एक सीन ने साबित कर दिया कि ये टैलेंट इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसने सिर्फ पहचान नहीं दिलाई, उसने हॉलीवुड में उनके लिए बेहतर भूमिकाओं के दरवाजे खोले।
उन्हें एक वजन दिया इंडस्ट्री ने।
एग्जैक्टली। उन्हें अपने करियर पर ज्यादा कंट्रोल मिलना शुरू हुआ। वो सिर्फ एक नॉमिनेशन नहीं था, वो एक तरह से उनकी प्रतिभा की पब्लिक वैलिडेशन थी। आत्मविश्वास बड़ा होगा उससे।
इन मोड़ों को देखते हुए और उनकी पूरी कहानी को, ऐसा लगता है ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए बहुत कुछ है।
बिल्कुल है। मुश्किल हालात से कैसे उभरें, शर्म और सदमे जैसी गहरी भावनाओं से कैसे निपटें, अपनी असली पहचान कैसे खोजें, ये सब इसमें है।
तो क्या मानवीय सबक मिलते हैं हमें उनकी जिंदगी से?
देखिए, पहला तो यही कि अपनी सच्चाई का सामना करने से ही बदलाव आता है, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। दूसरा, सफलता का असली मतलब सिर्फ बाहरी पहचान या अवार्ड्स नहीं है, बल्कि क्या आप अपने मूल्यों पर खड़े उतर रहे हैं।
सही।
तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, कि प्रामाणिक होना मतलब जैसा आप अंदर से है वैसा ही बाहर दिखना और जीना, यह अपने आप में एक ताकत है, एक तरह का प्रतिरोध है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें समाज किसी खांचे में फिट करना चाहता है।
और ये जिम्मेदारी वाली बात दी कि जब आपको मंच मिले, आवाज मिले, तो आप दूसरों के लिए भी बोलें।
हाँ, बिल्कुल। उन मुद्दों को उठाएं जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। उनकी कहानी हमें खुद से कुछ सवाल पूछने को कहती है।
जैसे?
जैसे कि हम अपनी जिंदगी की किन सच्चाइयों से भाग रहे हैं? क्या हम अपनी पूरी कहानी को अच्छे बुरे सब हिस्सों के साथ अपनाने की हिम्मत रखते हैं? और क्या हम अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं या दूसरों की मदद के लिए भी?
बहुत जरूरी सवाल हैं ये।
बिल्कुल, और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप उस शुरुआत को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अतीत आपको डिफाइन नहीं करता, पर वो आपको ताकत और समझ दे सकता है।
हाँ,
गहरे से गहरे जख्म भी आपको समझदार, दयालु बना सकते हैं अगर आप उस दर्द को किसी मकसद में बदल दें।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर सुनने वालों के लिए तीन खास बातें, तीन टेकअवेज निकालने हों तो वो क्या होंगे?
तीन बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। कह सकते हैं हमारे अतीत के सदमे या मुश्किलें हमें परिभाषित नहीं करते, लेकिन उनसे उभरने के लिए, हील करने के लिए हमें पूरी ईमानदारी और हिम्मत से उनका सामना करना पड़ता है। गहरे जख्म सिर्फ दर्द नहीं देते, वो हमें ज्यादा समझ और करुणा भी दे सकते हैं, खासकर तब जब हम उस दर्द को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ पाते हैं।
बिल्कुल। दूसरा?
दूसरा, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। सच्ची सफलता सिर्फ अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने असर, अपने मंच का इस्तेमाल उन सिस्टम्स को चुनौती देने में करना है जो मौके छीनते हैं, जो लोगों को पीछे धकेलते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने पीछे वालों के लिए रास्ता बनाना भी है। सफलता की परिभाषा को इतना बड़ा करना कि उसमें सब समा सके।
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और तीसरा?
और तीसरा, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, प्रामाणिकता। मतलब वो बनने का साहस रखना जो आप असल में हैं। दुनिया चाहे आप पर कुछ और बनने का कितना भी दबाव डाले, अपनी अंदरूनी सच्चाई पर टिके रहना, अपनी यूनिकनेस को, अपनी खासियत को बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा समझना और उसे दुनिया के साथ शेयर करना, शायद यही सबसे मीनिंगफुल जिंदगी जीने का तरीका है। आपकी जो अलग पहचान है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है।
बहुत खूब। प्रामाणिकता ही सबसे बड़ी ताकत है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।